ऑफिस। विनीत ऑफिस में अपने कमरे में हाथ में फोन लिए इधर उधर घूम रहा था। यार जाने मन कितना मुश्किल है अकेले रहना मेरे लगे, ये जानते हुए भी ऐसी सजा दे दी मुंह बनाते हुए मुझे। कोई पास हो, साथ हो, थोड़ी दूर ही सही, पर हो तो मन को तसल्ली रहती है, कोई है मन लगता रहता है। पर आज तो कोई नहीं, ऑफिस वाले भी कब के जा चुके हैं। 2-3 घंटे से अकेला हूं यहां। दी ने भी डांट दिया, उनसे भी बात नहीं करनी मुझे, ना ही उनको परेशान करना। ना काम कर पा रहा हूं टेबल पर पड़ी फाइलों की ओर देखते हुए, और ना ही बेड की ओर देखते हुए। आराम, नींद ही नहीं आ रही है। सच में घर में तो फट से नींद आ जाती है, उठाना भी दूसरों को पड़ता है, यहां तो आंख तक नहीं लग रही। बस कभी इधर टहल रहा हूं तो कभी उधर बालकनी की ओर देखते हुए, बस एक जगह टिक ही नहीं पा रहा हूं। अपनों के बीच जिसे अच्छा लगता है वो कैसे रहे यहां अकेला, और कितने टाइम बाद यहां रहने की पनिशमेंट मिली है। थोड़ी सी भी छूट नहीं थी तुमने मुझे जाने मन सजा में, देख लिया कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। यहां ऑफिस में अपने और मेरे लिए इसीलिए रूम बनाकर रखे हैं ना तुमने, ताकि मुझे सजा देनी हो तब इस कमरे का यूज कर सको। वैसे तो मैं यहां रहता नहीं, खुद तो कभी कभार यूज करते हो यहां का अपना रूम, वो भी दिन में, पर मेरे लिए रात में भी कैसे यूज करना है ये रूम अच्छे से जानते हो, पैर पटकते हुए। क्यों यार, वैसे अब कहने का भी क्या फायदा, आसान हो या मुश्किल रहना ही पड़ेगा। कहते हुए विनीत ने आह भरते हुए कमरे में इधर उधर हल्का सा मुस्कुराते हुए नजर दौड़ाई। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। ये देख विनीत हैरान होते हुए खुद से बोला, इस वक्त कौन आया है, ऑफिस में तो कोई है भी नहीं, कहीं कोई चोर उचका तो नहीं। अरे नहीं नहीं, सिक्योरिटी गार्ड के रहते ये कैसे हो सकता है, वैसे भी जाने मन ने पहले से ज्यादा ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, फिर कौन हो सकता है जो इस वक्त यहाँ आया है, देखना पड़ेगा। बोलते हुए विनीत ने हाथ में पकड़ा अपना फोन बेड पर फेंका और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही विनीत चौंकते हुए जोर से बोला, तरुण। विनीत के जोर से बोलने पर तरुण थोड़ा डर गया, उसने अपने दाएं बाएं देखा और फिर विनीत की ओर हैरानी से देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड सर। सेम व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम यहाँ ऑफिस में, इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम तो घर भी चले गए थे ना। यस सर, बट आई कम बैक इन ऑफिस, तरुण ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। पहले तो अंग्रेजी झाड़ना बंद करो और ये बताओ वापस क्यों आए, कहीं अयांश ने तुम्हें भी तो सजा नहीं दे दी, पर तुमने क्या किया जो बॉस ने तुमको भी सजा सुना दी, विनीत ने एक ही सांस में पूछा। रिलैक्स सर, रिलैक्स, और मुझे पनिशमेंट नहीं, ऑर्डर दिया है बॉस ने, तभी मैं ऑफिस में आया हूँ विनीत सर, तरुण हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। ओ तो ये बात है, मतलब अयांश ने तुमको मेरे साथ यहाँ रहने को भेजा है। यस सर, अंदर आ जाओ, तरुण ने कहा तो विनीत साइड होते हुए बोला, हाँ हाँ पधारिए। थैंक यू सर, कहते हुए तरुण कमरे में चला गया। विनीत दरवाजा बंद कर तरुण की ओर मुड़ा तो तरुण हाथ में पकड़ा बैग टेबल पर रख विनीत की ओर देखते हुए बोला, मैं खाना भी लाया हूँ आपके लिए सर, आपने खाना नहीं खाया ना। विनीत नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं मन ही नहीं किया खाने का। बॉस को पता था आपने खाना नहीं खाया होगा, तभी उन्होंने मुझे साथ में खाना लाने को भी कहा और मैं ले आया, सब कुछ आपके पसंद का लेकर आया हूँ सर, मन ना भी होगा खाने का तो भी मन हो जाएगा खाने को, खाना लगा दूँ, तरुण ने कहा कि तभी विनीत फट से उसके पास आ गया और खुश होते हुए उसके गले लग गया। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, सच में अकेले बड़ा अजीब लग रहा था यहाँ, पर तुम आ गए तो अच्छा लग रहा है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बॉस को कहना विनीत सर, उन्होंने ही भेजा है मुझे, तरुण ने ये कहा तो विनीत उससे अलग होते हुए बोला, सॉरी तरुण, मेरी वजह से तुमको आधी रात को मेरे साथ ऑफिस में रहने के लिए आना पड़ा, मेरे साथ साथ तुमको भी सजा मिल गई, तुम फंस गए। विनीत आगे कुछ कहता कि तरुण उसकी बाह पर हाथ रखते हुए बोला, इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई आने में, घर पर मैं अकेला ही रहता हूँ, यहाँ आपके साथ रहने को मिलेगा, अच्छा ही है ना, साथ रहेंगे साथ काम करेंगे, मुस्कुराते हुए। तरुण की बात सुन विनीत मुस्कुरा दिया, ये तो है, साथ रहेंगे काम भी करेंगे और बात भी, हमें एक दूसरे की कंपनी बड़ी रास आएगी। एक मिनट, तुम अकेले रहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स? वो कुछ दिनों से किसी रिलेटिव के यहाँ गए हुए हैं और कुछ दिनों बाद ही आएंगे। अच्छा, और तुमको नहीं लेकर गए? मुझे इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलती जो मैं उनके साथ जाता। बड़ा खड़ूस है ना, गंदा समूह बनाते हुए अपना बॉस, ये नहीं कि छुट्टी दे दे, छुट्टी के दिन भी काम, जब देखो काम काम, है ना। कुछ भी कहिए विनीत सर, बट अयांश सर जो करते हैं हम सबके अच्छे के लिए करते हैं, ज़्यादा छुट्टी लेने लगा तो मेरा ही लॉस है ना, और मेरा जाना माँ बाप के साथ इतना भी ज़रूरी नहीं था, बट उससे ज़्यादा मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे देखनी है यहाँ, मैं चला जाता तो कौन देखता, बॉस छुट्टी नहीं देते इस बात से मुझे कोई शिकायत नहीं। ये सुन विनीत ताली बजाने लगा, सही है तरुण जी, आधी रात को भगा दिया फिर भी तारीफ बॉस की, मान गए। मानना तो पड़ेगा ना सर, वैसे आपको जो कह दे बॉस, जो सजा दे दे आपको, पर आपकी जाने मन को आपका बहुत ख्याल रहता है, विनीत मुस्कुराते हुए बोला। ये तो है, आखिर जाने मन किसकी है, आपकी विनीत सर। हाँ, हंसते हुए, अच्छा तरुण, बाकी बातें बाद में, पहले खाना। खाना बैग में है, मेरे पेट तक नहीं पहुंचा, पर खाने की सुगंध ने मेरे पेट में खलबली मचा दी है। भूख लग गई, मन भी कर रहा है अब खाने को। मैं फटाफट हाथ धोकर आया, तुम खाना निकालो, फिर साथ में खाएंगे। मैं तो खा कर आया हूँ, कोई बात नहीं, और खा लेना। देखो साथ रहना है ना तो खाना भी पड़ेगा, वरना बॉस को शिकायत लगा दूं, सोच लो। नहीं नहीं, साथ रहूंगा भी और खाऊंगा भी, विनीत उसका चेहरा हाथ में भरते हुए बोला। गुड बॉय, नहीं नहीं गुड तो हो, बॉय नहीं, बड़े हो गए हो ना, सो गुड मैन। इस बात पर दोनों हंस पड़े। आया मैं, कहते हुए विनीत वॉशरूम की ओर बढ़ गया। तरुण बैग की ओर मुड़ा कि तभी विनीत रुकते हुए बोला, थैंक यू तरुण जी। अब थैंक यू किस लिए विनीत सर, कहा ना आपको बॉस को कहिएगा थैंक यू, उन्होंने ही भेजा है मुझे। तरुण आगे कुछ कहता कि विनीत हंसते हुए बोला, ये थैंक यू यहाँ आने के लिए नहीं, तो फिर कुंवारे रहने के लिए। अब तक तुम कुंवारे नहीं होते तो तुम्हारी बीवी आने देती क्या तुमको यहाँ, तुमको पीट डालती और मुझे यहाँ अकेले रात काटनी पड़ती सर, तरुण कमर से हाथ टिकाते हुए बोला। सही तो कहा, कहते हुए विनीत हंसते हुए वॉशरूम में घुस गया। ये विनीत सर भी ना, कहते हुए तरुण मुस्कुराते हुए बैग से खाना निकालने लगा। आरवी कभी खुद से बातें करती तो कभी बार बार फोन में टाइम देखते हुए खामोशी साधे दरवाजे की ओर एकटक देखती। ऐसे में आधा घंटा इंतजार करते करते निकल गया। तभी पिलो को सोफे की एक साइड फेंका और उस पर सिर रख सोफे पर लेटते हुए बोली, अब बैठ कर नहीं लेट कर वेट करेगा अपुन। थोड़ी देर बाद अयांश घर आ गया। वो तेज कदमों से चलते हुए अंदर आया और हॉल से ऊपर जाने लगा, तभी उसके कदम रुक गए। उसने सोफे पर आरवी को सोता पाया तो अपनी वॉच में टाइम देख भौहें से कोरते हुए बोला, 3 बजने को है, ये यहाँ और ये यहाँ सोफे पर क्यों सो रही है, खुद से कहते हुए आयांश ने अपने कदम आरवी की तरफ बढ़ा दिए।
आयांश आरवी के पास आया, वो सीने से अपने हाथ बांधे, पैर पर पैर चढ़ाए, आंखें बंद किए हुए सोफे पर लेटी थी। उसके खुले बाल पिलो पर ही नहीं, कुछ उसके माथे और कुछ चेहरे पर भी बिखरे हुए थे। आयांश आरवी को यूं चैन से वहां सोता पाकर मुस्कुराते हुए उसके सामने टेबल पर बैठा और हाथ आरवी की तरफ बढ़ाकर उसके माथे चेहरे से बिखरे बाल अपनी उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता हटाते हुए धीरे से बोला, कहा था ना लेडी कुंभकर्ण, वेट मत करना, देखो वेट करते करते यहीं सो गई। इतना कहे आयांश ने प्यार से आरवी के गाल को छुआ और फिर टेबल से उठकर आरवी को बाहों में उठाने लगा। चलो रूम में छोड़ देता हूँ तुमको, वहां अच्छे से सोना। आयांश ने आराम से आरवी को बाहों में उठाया, तभी आरवी ऊँघते हुए थोड़ा हिलती है और आयांश के सीने से अपना सिर टिका लेती है। आयांश उसे बड़े ही गौर से देखने लगा, पर आरवी ने उसके बाद कोई हरकत नहीं की, बस उसकी सांसों का शोर सुनाई पड़ रहा था। ये देख आयांश की बौहें चढ़ गईं और वो आरवी को ऊपर ले जाते हुए मन ही मन बोला, अजीब लड़की है, इतनी गहरी नींद में सोती है कि पता भी ना चले बेड पर है या किसी की बाहों में, सच में है तो लेडी कुंभकर्ण ही, थोड़ा आरवी को घूरते हुए। आयांश आरवी को बाहों में उठाए ऊपर आरवी के ही कमरे में ले आया और धीरे से उसे बेड पर सुला दिया। पर जैसे ही बेड पर सुलाकर वो आरवी से दूर होने को हुआ, तभी आरवी अपनी आंखें खोल मुस्कुराते हुए आयांश के गले में बाहें डालते हुए तपाक से बोली, हेलो मिस्टर मेहरा। ये देख आयांश बाहें से कोरते हुए रान होते हुए आरवी पर झुके झुके ही बोला, तुम जग रही हो, क्रमशः।